अक्षित राहुल को छोड़कर घर पहुंचता है और संध्या के बारे में ही सोच रहा होता है। मंजू जी दरवाजा खोलते ही अक्षित से पूछा, आ गया अक्षित, कैसा रहा वहां सब? पर अक्षित का ध्यान सिर्फ संध्या पर होता है कि अब संध्या से कैसे बात करें, क्योंकि संध्या बहुत गुस्सा है। और मंजू जी बातों का बिना कोई जवाब दिए अक्षित सीढ़ियां से अपने रूम में चला जाता है। अंकित जी भी अक्षित की ओर देखते हैं, अक्षित, पर अक्षित का उनकी ओर भी ध्यान नहीं जाता है। अक्षित अपने रूम में चला जाता है और रूम का गेट बंद कर देता है। अंकित जी मंजू जी की ओर देखते हैं, ये सब क्या है, मैंने कितना पूछा, किसी बात का जवाब नहीं, ध्यान कहाँ है अक्षित का, कुछ बताया ही नहीं, अपने रूम में चला गया। मंजू जी ने हैरान होकर पूछा, अरे आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं, सब ठीक है और वहाँ भी सब ठीक होगा, और हो सकता है अक्षित थक गया हो, सुबह बात कर लेना, अब बहुत लेट भी हो गया है, अंकित जी ने मंजू जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। आप अच्छे से जानते हैं मैं यूं ही परेशान नहीं हो रही हूँ, कोई तो वजह ज़रूर है, और आपको भी ये सब लग रहा है, मुझे तसल्ली देना बंद कीजिए, हमारा बेटा बहुत अपसेट है, मंजू जी ने अक्षित की रोम की ओर देखते हुए बोला। हाँ ये तो है, कुछ तो है, चेहरा देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं इसका कि कुछ तो हुआ है, और अब पूछने भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं बताएगा, अंकित जी बोले। हाँ पर अब क्या करें, वजह कहीं देव संध्या तो नहीं, कहीं उस वजह से तो उदास नहीं है ना जी, ये सच तो हम भी जानते हैं ना मंजू जी, सोफे पर बैठते हुए बोली। नहीं जी, देव संध्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं संध्या की लाइफ में अक्षित खुद संध्या के साथ मिलकर देव को लाया है, और वो सिर्फ दोस्ती रखकर ही बहुत खुश है, अपनी दोस्त की खुशी में खुश रह सकता है, अंकित जी ने कहा। तो फिर ऐसा क्यों है जी, मंजू जी ने पूछा। वजह इसके उदास मन की संध्या ही है, पहले तो सब ठीक था, मैंने नोटिस भी किया था, विदाई के टाइम कुछ तो हुआ था, साथ थे एक जगह पर उखड़े हुए, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो और अब तक वो सॉल्व ना हुआ हो, अंकित जी ने कहा। क्या झगड़ा इनका, लड़ते तो और बहस बात बात पर करते हैं, पर एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह सकते हैं, पर आज इनकी हालत है, कुछ बड़ा ही हुआ होगा, जो खुद भी परेशान हो रहे हैं, मंजू जी ने कहा। हाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा जो इन्होंने घंटों खींच लिया, अंकित जी बोले। वो तो पता नहीं, पर हे भगवान हमारी सुनेंगे नहीं, बस जल्दी सब ठीक हो जाए, मेरे बच्चे एक दूसरे से बात किए बिना मिले बिना नहीं रह सकते हैं, और इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही होगी दोनों को, मंजू जी ने मंदिर की ओर हाथ जोड़कर बोला। आप टेंशन मत लीजिए मंजू जी, दोनों में से गलती किसी की भी हो और जो भी हुआ हो जल्द एक सही कर लेगा, क्योंकि एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे, ज्यादा वक्त नहीं चलेगा, वापस मुस्कराएंगे और बाकी हम सुबह बात करते हैं, अंकित जी ने कहा। कहते हुए मंजू जी हाँ में सिर हिलाती है। अंकित जी चलिए बहुत रात हो गई है, आराम कर लेते हैं, और मंजू जी और अंकित जी अपने रूम में चला जाते हैं। अक्षित का रूम। अक्षित अपने बेड की ओर बढ़ता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है अपना सर पकड़कर। तभी अक्षित के फोन में नोटिफिकेशन आता है। संध्या, कहते हुए अक्षित उठकर अपने पॉकेट से फोन निकालता है। वो मैसेज श्रेया का होता है कि वो मुंबई पहुंच गई है, संध्या का नहीं होता है। पल भर के लिए आई अक्षित के चेहरे की स्माइल फिर हट जाती है और ओके लिखकर अपने फोन को बेड पर फेंक कर अक्षित अपने बेड के पास ही जमीन पर बैठ जाता है। अक्षित के आंख से भी आंसू बहने लगते हैं और उधर संध्या बेड पर औंधे मुंह लेटे रोए जा रही होती है। दोनों को सिर्फ अपनी ही सिसकियां सुनाई दे रही होती हैं। वक्त तो था दोनों का इस वक्त एक दूसरे से बात करके, गुड नाइट बोलकर, कल की प्लानिंग करके सोने का, पर आज नींद कहाँ आए, चैन जो नहीं था, तकलीफ दोनों को हो रही थी। अक्षित सोचता क्यों किया ऐसा, और संध्या सोचती ये नहीं होना चाहिए था। आंखों से बहते आंसू बता रहे होते हैं जो कभी ना हुआ वो पहली बार हुआ है दोनों की दोस्ती में, जिसका दोनों को कभी अंदाजा न था। आदत एक दूजे को ऐसी की रह ना पाए, पर कदम एक दूजे की ओर अब कैसे बढ़ाएं, कैसे एक कहे और कैसे दूसरा सुने। तभी संध्या का फोन बजता है। संध्या फट से फोन उठाती है, पर फोन अक्षित का नहीं देव का होता है। अक्षित करेगी कैसे फोन, जानता था मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है, फोन तो उठाएगी नहीं, इसीलिए कोशिश करे भी कैसे सोचकर बैठा रहता है। संध्या देव का कॉल उठाती है। हेलो, देव ने कहा। हाँ देव बोलो, संध्या ने कहा। क्या हुआ संध्या, तुम ठीक हो, देव ने संध्या की बुझी सी आवाज सुनकर पूछा। हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ घर पहुंच गए, संध्या ने पूछा। लग तो नहीं रहा है ठीक हो, देव ने कहा। ठीक हूँ यार, बस सो रही थी, संध्या ने बोला। अच्छा सॉरी, वो मैं घर आ गया था और घर पर माँ को और दीपाली को बताया वहाँ सबके बारे में, सोचा तुम्हें बता दूँ, और ये भी कि मैं घर पहुँच गया हूँ, देव ने बोला। अच्छा क्या कहा फिर घर वालों ने, संध्या ने पूछा। तुम सो जाओ, लगता है बहुत थक गई हो, मिलकर बताता हूँ, ओके टेक केयर, देव कहता है। ठीक है देव, और संध्या फोन काटकर फेंक देती है। सॉरी देव, पर सच में हमारा मन नहीं था बात करने को, और मैंने झूठ भी बोला,
ये सब उस अक्षित के बच्चे की वजह से हो रहा है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। संध्या गुस्से में बड़बड़ाती है और जाकर चुपचाप अपनी खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। आंखें नम होती हैं और नम आंखों से आसमां की ओर देखती है। उधर अक्षित भी उठकर अपनी अलमारी के दराज से अपनी और संध्या की यादों के एल्बम निकालता है और पन्ने पलटकर देखता है, और एल्बम देखते देखते अक्षित भी खुद खिड़की के पास चला जाता है और एल्बम को अपने सीने से लगाकर बोलता है, संध्या यार क्या करूं। और संध्या और अक्षित दोनों बचपन से लेकर अब तक की अपनी सारी यादों को याद करने लगते हैं। बचपन का खेल, स्कूल की मस्ती, कॉलेज के पल, सब दोनों की आंखों के सामने किसी फिल्म के जैसे चलने लगते हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है। अक्षित संध्या के बारे में सोचते हुए, तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। संध्या अक्षित के बारे में सोचते हुए, तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। संध्या अक्षित और देव दोनों के बारे में सोचती है कि देव के आने से कुछ नहीं बदलेगा, फिर ये क्यों, क्रमशः है।